जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं उवसमिदशयनदोषे उवसन्तकषाय वीयरायन्ते उवसामये पणमिहुं कसाय उवसामणं होचं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुंगी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14 पुस्तक में चारित्र मोह की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 105 पर आ गए। देखो यहाँ विषय चल रहा है उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने वाले जीव की बात चल रही है। पहले हमने विस्तार से क्रोध कषाय और पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले की बात देखी। अब कहते हैं कोई मान के उदय से चढ़ेगा, कोई माया के, कोई लोभ के, तो उसमें क्या विशेषता, क्या अंतर, क्या डिफरेंस होगा, उसकी बात यहाँ बताए जा रहे हैं। तो पहले कहते हैं कि वेदों की बात बाद में करेंगे, अभी कषायों की बात करें। तो मान से चढ़ने वाला जीव क्या करेगा, तो क्रोध से चढ़ने वाले ने क्या किया था, पहले नपुंसक वेद की उपशामना की थी, फिर स्त्री वेद की और फिर 7-9 कषायों। वहाँ तक तो मान वाला जीव भी वैसी समानता उसमें भी होगी। डिफरेंस कहाँ होगा, तो क्रोध वाले ने जितनी क्रोध की प्रथम स्थिति बनाई थी, अब मान वाला जीव क्रोध वेदक काल प्लस मान वेदक काल दोनों के मिलकर उतनी उसकी प्रथम स्थिति बनेगी, उसके ऊपर वो अंतर करेगा। मैंने पहले वाला जीव क्रोध का उदय चल रहा था, क्रोध की प्रथम स्थिति थी और तब उसने क्रोध को उपसमाया था। अब ये मान से ही चढ़ने वाला शुरू से मान से ही उसका उदय चल रहा है, तो क्रोध को उपशमाने का कार्य मान के उदय में ही चलेगा, ये बात बताए। वहाँ क्रोध के उदय में क्रोध को उपशमाया था, यहाँ मान के उदय में क्रोध को उपशमाया जा रहा है, ये बात यहाँ हमने देखी थी।
उतरते समय भी मान के उदय के साथ ही ललिता अवशेष हो जाएगी ना।
हाँ, उतरते समय भी जब मान का उदय शुरू हो जाएगा तो लोग, तीन लोग, तीन माया और तीन मान, ये 9 कषायों की वहाँ गुण श्रेणी होगी और तभी अंतर पूरा दिया जाएगा। मान का उदय होने पर अंतर पूर्ण किया जाएगा और तब से लेके गलित गुण श्रेणी चलेगी, उसको 9 कषायों का कहा था। वहां इतनी बात तो हमने पढ़ी है, अभी 105 पे नीचे का सूत्र पढ़ेंगे। पहले प्राकृत में देखते हैं। कोहेन उवठिदस उवसामगस्य पुनो पडिवद मानगस्य जद्देहि मानवेदगद्धा इत्यमेत्तेनेव कालेन मानवेदगद्धाय अधिच्छिदाय ताधेचेव मानम वेदयन्तो एक समय ने तिविहम कोहम अनुवसंतम करेदी। वेदन तो है का वेदन तो है, नहीं जरा सूत्र में देखना है पीछे 105 नंबर वाला, थोड़ा कंफर्म करते हैं वेदन तो होना चाहिए के वेदन तो, पीछे सारे सूत्र लिखे हैं पृष्ठ 380 पर, 105 को नंबर दिया है 7। वेदेन तो ही है, मानव वेदेन तो एक समय ने तिव्यम को हम अनुसंतम करी दी वेदंतस, आगे भी वैसे शब्द आया बराबर है, ये मेरा ही पक्का नहीं था, वेदन तो चाहिए के वेदेन तो, अभी इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे हम। क्रोध से श्रेणी पर चढ़े हुए उपशामक के, पुनः गिरने वाले उसी के, जितना आयाम वाला मान वेदक काल होता है। हमने देखा पहले क्रोध से ऊपर चढ़ा, सबको उपशम आया, ग्यारहवें में गया, फिर सूक्ष्म सांप्राय में आया, तो पुष्टि वेदक लोक का पुष्टि वेदन का उसने उसकी गुण श्रेणी बनाई थी, फिर उसमें माया वेदक काल में आया और फिर मान वेदक काल में आया, तब जितना मान वेदक काल उसका जितने आयाम वाला था उतने ही काल के द्वारा मान वेदक काल के अतिक्रमण करने पर उसी समय मान का वेदन करता हुआ एक समय के द्वारा तीन प्रकार के क्रोध को अनुपशांत करता है। अनुपशांत करता है ने पहले उपशम आया था, अभी वो उपशम उसका छूट जाता है। देखो पहले तो क्रोध से ऊपर चढ़ा था, फिर ग्यारहवें तक पहुंचा और फिर नीचे उतरा, नीचे उतरते समय क्या हुआ उसका, पहले सूक्ष्म सांप्राय, फिर अनिवृत्तिकरण का लोभ वेदक हो गया, फिर माया वेदक हुआ और फिर मान वेदक हुआ, और यहाँ के बाद क्रोध वेदक हुआ था, यहाँ उसका क्रोध अनुपशांत हुआ था, परंतु उदय उसका क्रोध का चल रहा है। अब ये कौन सा जीव लिया इसके बाजू में लेते हैं, ये मान सही चढ़ने वाला, मान सही चढ़ने वाला यानी यहाँ क्रोध का उदय था, फिर मान का हुआ था, फिर माया का हुआ था, वो इस तरह से। अब जो मान सही चढ़ना चढ़ने वाले उसने शुरू से ही इसकी प्रथम स्थिति बनाई थी और तभी उसने क्रोध को उपशमाया था इस काल तक, और बाद में रेगुलर जितना हुआ था, उतरते समय क्या हुआ, अब यहाँ उसका मान वेदक काल चालू हो गया, तो यहाँ से मान का उदय चलेगा नीचे तक, जैसे इसने जितने काल में मान को अनुपशांत करके उसके वहां रचना की थी, मान का वेदक काल था, उतना इसका भी बीत गया। यहां पर इस क्रोध वाले ने यहां पर क्रोध का अपकर्षण करके वहां उसकी गुणश्रेणी बनाई थी, यानी अनुपशमित किया था। मान वेदक ने भी इसी पॉइंट पर आकर क्रोध को अनुपशमित किया। डिफरेंस क्या रहा, इसका क्रोध का उदय था, इसका मान का उदय कंटिन्यू रहा। क्रोध वेदक वाले ने पहले लोभ का उदय किया, फिर माया का किया, फिर मान का किया और फिर क्रोध का उदय किया, और उदय करते हुए यानी उसका अनुपशांत किया और उसी समय उसका क्रोध का उदय चला। परंतु मान के उदय के वाले ने क्रोध का उदय किया ही नहीं, उसको ऐसे अनुपशांत कर दिया इस काल में यहां पर आकर। ये डिफरेंस है, अभी बताएंगे।
अंतर पूरण काल तो मान के वेदक काल के पहले समय से अंतर
हो गया, अंतर पूरण उसने तभी कर दिया जब मान का वेदक शुरू हुआ।
तो अंतर पूरा हुआ तभी क्रोध का परमाणु, जो क्रोध के परमाणु थे वो नीचे नहीं आए थे, ऐसा उनका कहना है।
हाँ, गुण श्रेणी केवल नौ की ही बनी थी।
अच्छा, नौ तो क्रोध का ऊपर ही
क्रोध तो अनुपशांत था ना,
उपशांत था,
उपशांत था, सॉरी उपशांत था, क्रोध उपशमित था, जो उपशमित है उसके वो अपकर्षण नहीं होता,
नहीं
अभी अनुपशमित हो गया
लास्ट,
फिर भी उसका उदय नहीं हुआ।
हाँ,
मान तो यहीं से अनुपशमित हुआ था, यहाँ क्रोध अनुपशमित हुआ, यानी यहाँ क्रोध का उदय नहीं शुरू हुआ, परंतु यहाँ क्रोध का बंध चालू हो जाएगा, अब तक क्रोध का बंध नहीं होता था, यहाँ जब लोभ का उदय शुरू हुआ था तो अकेला लोभ का बंध होता था, फिर यहाँ माया का उदय चालू हो गया, तब लोभ और माया दोनों बंधने लगे, मान का उदय शुरू हुआ,
क्रोध मान माया
तीन, सॉरी लोभ माया और मान तीन, और जब यहाँ शुरू हो गया तो यहाँ क्रोध का भी बंध होगा, अभी क्रोध का यहाँ उदय नहीं है क्योंकि मान के उदय से ही चला था। हाँ, पूरा पूरा एक समय में अनुपशमने का कार्य एक समय में होता है, उपशमित होने के लिए क्रम पड़ता है।
आप बैठिए बैठिए।
उपशमित होने के लिए अंतर्मूर्त लगा था,
हाँ।
एक फाली, दो फाली, तीन फाली, क्रम से उपशमित हुआ था अंतर्मूर्त में। अनुपशमित होने के लिए एक समय में होता है, पहले हमने पढ़ा था, एक ही समय
एक
में
ही समय लगता है।
अनुपशमित होता है, उसका अपकर्षण होता है, नीचे उसकी रचना हो जाती है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, मान का उदय चल रहा है और क्रोध अनुपशमित हुआ, अनुपशमित हुआ ने अभी उसका अपकर्षण हुआ, पहले नहीं था, वो ऊपर ही पड़ा था।
यहाँ पे बताया ना, वेदन करता हुआ एक समय के द्वारा तीन प्रकार के क्रोध को अनुपशांत करता है।
हाँ, वही तो, हाँ। 105 पर पढ़ रहे थे ना अभी, 106। तीन प्रकार के क्रोध को, और वो भी एक समय में,
एक समय
अनुपशमने का कार्य एक समय में होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे उसी का स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, 106 नंबर के पृष्ठ पर। जिस प्रकार क्रोध से चढ़ा हुआ उपशामक जीव, ये कंपेयर कर रहे हैं पहले जीव के साथ, तो हम भी फिर दोबारा स्मृति में आ जाएगी कि वहां क्या हुआ था। तो क्रोध से चढ़ा हुआ उपशामक जीव नीचे गिरता हुआ मान का अपकर्षण करके अनंतर पूर्व अंतर्मूर्त काल के द्वारा मान वेदक काल के समाप्त होने पर, यानी क्रोध से चढ़ने वाला गिरते गिरते जब उसका मान वेदक काल समाप्त हुआ था, यहां उसका मान वेदक काल समाप्त हुआ था, तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करता है, ये तो पहले वाले जीव की बात की। उसी प्रकार यह जीव भी, अर्थात मान के उदय से चढ़ा हुआ जीव भी, उतने ही काल में मान वेदक काल के निकल जाने पर, पूरा मान वेदक काल समाप्त हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, क्रोध वाला जीव का मान वेदक जितना था उतना काल बीतने पर, बीत जाने पर, उसी स्थान में तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करके एक समय में उन्हें अनुपशांत करता है। तो डिफरेंस कह रहा, कहते किंतु पहले का जीव क्रोध का वेदन करता हुआ, वेदन करता हुआ ने उसका क्रोध का उदय चल रहा, तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करता है, पर यानी परंतु यह मान का ही वेदन करने वाला होकर, यानी इसका मान वेदक शुरू से शुरू रहा था वही कंटिन्यू रहता है, क्रोध का उदय नहीं शुरू हो जाएगा अभी, तो मान का ही वेदन करने वाला होकर होकर भी तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करता है। इस प्रकार यह नानापन यहाँ जानना चाहिए, यह डिफरेंस यहाँ जानना चाहिए, नानापन यानी डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या विशेषता है, उसकी बात बता रहे। और जिस प्रकार क्रोध संज्वलन से चढ़ा हुआ जीव तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करके क्रोध संज्वलन के गुणश्रेणी निक्षेप को उदयादि गलित शेष आयाम रूप से ज्ञानावरणादि कर्मों के समान निक्षिप्त करता है। ज्ञानावरणादि कर्मों के समान यानी उसका गुणश्रेणी निक्षेप, गुणश्रेणी आयाम कितना है, तो जितना भी ज्ञानावरणादि का शेष है उतना है।
अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण प्लस साधिकता,
नहीं अभी जितना शेष है उतना,
अभी जितना,
अभी जितना शेष है उतना। उस प्रकार यहाँ तीन प्रकार के क्रोधों का उदयादि गुणश्रेणी निक्षेप संभव नहीं है। मंजूबेन क्यों नहीं है? उदयादि गुणश्रेणी क्यों नहीं संभव? उदयादि, हाँ बहुत अच्छा, उदय नहीं है। उदय किसका चल रहा है? मान का। जिसका उदय है उसकी गुणश्रेणी उदय के समय से लेकर होगी उदयादि, तो इसकी गुणश्रेणी होगी कि नहीं होगी? होगी। कहाँ से होगी? उदयावली के ऊपर से। जिसका उदय होता है उसकी गुणश्रेणी उदयादि से होती है। तो यहाँ क्या कहते, देखो फिर से पढ़ेगी इसका। तो वहां तो उस जीव ने ज्ञानावरणादि के समान उदयादि गलित किया था, उस प्रकार यहाँ तीन प्रकार के क्रोधों का उदयादि गुणश्रेणी निक्षेप संभव। निक्षेप यानी गुणश्रेणी रूप से जो दिया जाता है वो उदय के समय से नहीं दिया जाएगा, आवली छोड़कर ऊपर से पहले निषेक में, फिर कम, फिर दूसरे में असंख्यात गुण, असंख्यात गुण, असंख्यात। किंतु उदयावली के बाहर ही उक्त तीन कर्मों का शेष कर्मों के सदृश आयाम, आयाम यानी लंबाई, नंबर ऑफ निषेक, और गलित शेष रूप से, ये भी गलित शेष है, एक एक निषेक उदय में आकर गल जाएगा और गुणश्रेणी एक एक निषेक से एक एक समय से कम होती चली जाएगी। आयाम उसका क्रोध की बात चल रही, तीन क्रोध की। तो अन्य कर्मों के सदृश उसका आयाम है और गलित शेष रूप से गुणश्रेणी निक्षेप होगा। इस प्रकार यह भी यहाँ पर फर्क जानना चाहिए, यानी यही यहाँ डिफरेंस है। नहीं नहीं, मान की भी गलित अवशेष बनी जब मान का ही उदय शुरू हो गया। अच्छा। जिस कषाय के उदय से चढ़ता है उस कषाय का जब अपकर्षण करके उसकी गुणश्रेणी नई बनती है
गलित अवशेष,
उसी समय से वो अंतर भी पूरा जाता है, गलिताशेष गुणश्रेणी अन्य कर्मों के समान हो जाती है।
ये जो मान से चढ़ा हुआ है, हाँ, उसकी माया और लोक की अवस्थित नहीं थी
पहले, अवस्थित थी।
हाँ, माया और लोक उसकी उसके काल में अवस्थित थी।
अच्छा, फिर उनकी गलिताशेष हो गई
जब मान का उदय शुरू हो गया। देखो, जब क्रोध के उदय से ही चढ़ा था वो उतरते उतरते पहले क्या हुआ, सूक्ष्म सांप्रदाय पहले कृष्टि हुआ, तो उसका वेदक काल है, उतनी उसकी गुणश्रेणी बनी। फिर नवे में आ गया बादर लोग, तो उसका जो वेदक काल है उतनी गुणश्रेणी फिर बढ़कर अवस्थित हो गई, उतने काल तक अवस्थित रही, लोग वेदक काल तक अवस्थित रही। हाँ, लोग वेदक काल जितना है उससे आवली ज्यादा होती है गुणश्रेणी की। फिर क्या होगा, तब तक अवस्थित रहेगी, जब तक वेदक काल चल रहा है लोभ का तब तक वो उतनी की उतनी रही, एक निषेक गल जाएगा, ऊपर का एक निषेक उसमें आ जाएगा गुणश्रेणी रूप से, फिर माया वेदक काल शुरू होगा, फिर गुणश्रेणी बढ़कर माया की और लोभ की समान हो जाएगी।
लोभ की भी अवस्थित है, माया की भी अवस्थित है,
फिर दोनों की अवस्थित है। फिर माया वेदक काल समाप्त हो, अभी मान वेदक काल शुरू हुआ, फिर और बड़ी सबकी, यानी लोक की, माया की, मान की, सभी नौ के नौ गुणश्रेणी स्वयं आयाम स्वयं उसका समान हुआ आयाम उसका।
क्रोध के चढ़े,
क्रोध से चढ़ा था तब भी बढ़कर अवस्थित हो गए, कब तक, मान वेदक काल तक। अब लोग क्रोध का वेदन शुरू हो गया,
अभी
सभी फिर बढ़ी, बढ़ी तो सही और बढ़कर ज्ञानावरणादि के समान हो गए। हाँ, चार के ने बारह की हम कहेंगे, चार तक बारह की तुलना सबकी होगी। अनंत अनुबंधी तो यहाँ की कोई सवाल ही नहीं उसका, अन्य तीन तीन है ना, तो सबके समान हो, और तभी अंतर को भी पूर्ण दिया गया। हाँ, जब क्रोध के उदय से चढ़ा था तब क्रोध के उदय से जब नीचे आया तब जाके उसका अंतर पूरा दिया गया, सबका अंतर पूरा हुआ, सबका अंतर यहीं पर पूरा हुआ, क्योंकि गुणश्रेणी अभी बढ़ी और मान के चढ़ा हुआ की बात नहीं चल रही है अभी, तो क्रोध के उदय के चढ़े हुए तीन बार तो उसने बढ़ाकर अवस्थित की, और जब क्रोध का उदय हुआ तो बढ़ा दिया, फिर गलित अवशेष
ये बढ़ा दिया, तो एक अपने को
कर परिणाम के कारण वो बढ़ गया,
या इसलिए कि जो माया वेदक काल है और अभी लोभ का खत्म हुआ तो लोभ वाले को बढ़ा के माया के बराबर किया।
वही सही, लोभ के वाले को बढ़ाकर माया के, और माया का भी उतना होगा ना,
माया के बराबर किया।
हाँ, माया का तो अपना नया हुआ है। हाँ, और क्रोध का बढ़कर माया जितना हो गया। हाँ, ऐसे समझना,
अभी यहाँ पे क्रोध की पहली स्थिति प्रथम स्थिति नहीं बनी है, क्रोध का तो अभी उपशमन नहीं है, मान का जब भी वेदक हो गया तभी मान के वे मान
तभी
के,
क्रोध अभी अनुपशांत है,
नहीं उपशांत,
उपशांत है, मैं उल्टा बोल रही। हाँ,
तो प्रथम स्थिति सबकी पूर्ण हो गई, जो अंतरकरण किया था वो सभी में पूर्ण नहीं हुआ, खाली क्रोध में बाकी रह गया।
क्रोध में बाकी रह गया, क्रोध का जब अपकर्षण होगा
तभी उसका
तब उसके परमाणु सर्वत्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, अंतरकरण पूरा उसके जिस कषाय से चढ़ा था उस कषाय से उतरा तब जाके अंतर पूरा हुआ, परंतु जो कषाय अभी उपशांत है, अब सही बोल रही हूँ, जो उपशांत है वो अभी नीचे कहाँ है, वो उधर ही है, क्योंकि उसके तो उपशमित है ना, उसका अपकर्षण संक्रमण कुछ नहीं है तब तक। हाँ तो अब तक तो अंतर था, जब लोभ का उदय चल रहा था तो अंतर को लांग कर जंप करके वो प्रथम स्थिति बनाई थी उसने, ये उसी के बारे में अपना पहले हुआ था ना, अंतर है कि नहीं है इसके बारे में हमारा कंफ्यूजन चल रहा था। उतर रहा है तो तभी अंतर था और तभी तो प्रथम स्थिति बनाई थी उसने। देखो चढ़ते समय क्या हुआ था, चढ़ते समय ऐसे कर्म थे, अभी एक एक के अलग नहीं बनाएंगे हम, परंतु उसने अंतर बनाया था, ये अंतर बना दिया इतना, ये प्रथम स्थिति है द्वितीय स्थिति, फिर चढ़ा वो, कब बनाया था, ये नौवे में बनाया था, तो ये क्या था, तो नौवे का और दसवें का काल अभी हम समझेंगे, नीचे उसके जो ऊपर से भी आते थे जो कुछ रचना बनती थी ये खत्म हो गया, जब यहाँ पर आ गया तो ग्यारहवा गुणस्थान आया, ग्यारहवा गुणस्थान चला इतने काल तक, उसके बाद दसवां गुणस्थान आया, कृष्टि का अपकर्षण किया यानी तीन लोक का उसने अपकर्षण किया और यहाँ पर उसने रचना की,
खाली लोक की कृष्टि बनाई,
लोक की बनाई, तो कृष्टि वेदक समाप्त तो हुआ, तब स्पर्धक वाले लोग नीचे आए, क्योंकि ये समाप्त तो होते होते उसकी आवली बाकी रही, तब आगे वाले की गुण श्रेणी हुई लोभ वेदक की, वो ऐसे ही अंतर था वहां पर भी, फिर जब माया वेदक चालू हो गया तो लोभ के तीन और माया के तीन, ऐसे छह गुण श्रेणी यहाँ ऐसे बनेगी, हम खाली एक एक ही दिखा रहे, फिर मान का हुआ, उससे भी बढ़कर गुण श्रेणी का आयाम हुआ,
नौ
का हो गया,
नौ का,
जब क्रोध का हुआ तब बारह के बारह ऐसे हो गए, और तब भी अंतर था ऊपर, और वो अंतर वहाँ पूरा दिया गया,
ये कब पूरा किया, जो बार बचा,
जब क्रोध का उदय चालू हो गया तब, अब भी वेदों में बाकी है, वेदों में अभी वो सभी नौ नौ कषाय जो है ये केवल संज्वलन में चल रही बात, उसकी बात और बाद में होगी, उसके फिर नीचे आएगी, उसकी रचना होगी, उसका अंतर पूरा दिया जाएगा अपने अपने उदय काल में, या अपने अपना जो उसका वेदक काल कहो या उसका अपना अपना काल आने पर अनुपशांत होने का। आगे बढ़े अभी वही, तो पहले अपना कंफ्यूजन चलता है ना, अंतर पहले ही समय से जब लोभ का आकर्षण हुआ तभी अंतर पूरा, क्योंकि एक कुछ शब्द आया था अंतर पूरने तक ऐसा कुछ, तो उसका अर्थ हमें तभी अंतर पूर दिया ऐसा लगा था, अंतर तो बाद में पूरा होता है, जिस कषाय के उदय से चढ़ा था उतरते समय उस कषाय का उदय शुरू हो जाएगा आकर्षण होकर, उसके साथ साथ गुण श्रेणी भी बनेगी और गुण श्रेणी के ऊपर अंतर है उसको पूरा दिया जाएगा, वहां निषेक नए तैयार हो जाएगी। अश्विन भाई और जेपी एक नया आगम लिखने वाले
खाली प्रूफ रीडिंग करने वाला, मेरी ओर से कुछ मैं बढ़ाने वाला
नहीं।
चलो आगे बढ़ेंगे अभी। आगे के सूत्र में यही बात कहेंगे वहां पर।
Yeah, dude.
हाँ, जब मान के उदय से चढ़ा था, जब उतरते समय मान का उदय चालू हो गया, तब जो गुण श्रेणी बनी सबकी समान हो गई है, बाकी भी बढ़कर मान जितनी हो गई, यानी अभी लोभ की तीन, माया की तीन, मान की तीन, सभी बढ़कर ज्ञानावरण आदि के समान हो गए, बढ़कर हुई उसी समय। और नेक्स्ट समय से एक एक निषेक गलेगा तो उसको गलितावशेष कहेंगे। मान की हाँ उदय आदि
नहीं, ये तो यहाँ पे लोभ और माया भी उदय से ही है ना, खाली एक निषेक ऊपर होगा ना,
वो पहले जो निषेक है वो नीचे आ गए है।
हाँ।
गुण श्रेणी ऊपर ऊपर से होती थी, परंतु जो उदयावली में प्रवेश करते हैं,
नहीं उनका
जिसका उदय नहीं है ना, ये निक्षेप की बात चल रही है।
हाँ।
निक्षेप जो चल रहा है, कहाँ से गुणित प्रमाण में दिया जाएगा? उदयावली के ऊपर से। पूर्व में जो गुण श्रेणी बनी थी और उदयावली में प्रवेश कर चुकी है, वो भले ना उसके निषेक बड़े बड़े हैं।
हाँ।
दिखने में वो गुण श्रेणी जैसे दिखेगे।
हाँ।
परंतु उसमें गुण श्रेणी रूप से द्रव्य नहीं दिया जाएगा, जो उदय रूप है उसकी उदयादि चलेगी बात। अभी हम यही बात आगे के सूत्र में वो बताएंगे। देखो पहले प्रकृत में पढ़ते
हैं। यहाँ पे भी जो मान के उदय के साथ जो नीचे उतरा है उसकी जो गलितावशेष होगी, तभी क्रोध और माया,
क्रोध कहाँ है वहाँ पर,
नहीं सॉरी लोभ और माया।
हाँ।
उनकी जो होगी वो आवली के ऊपर वो गुण श्रेणी रचना हो जाएगी।
हाँ, जो उदय रूप नहीं है ना।
हाँ।
तो वो आवली के ऊपर गुण श्रेणी रूप से निक्षेप होगा, निषेक रचना। हाँ, उदय के समय से निषेक रचना है। पर उदय वाला जो निषेक है।
हाँ।
वो भी मान रूप से उदय में आएगा।
हाँ। पर उसकी भी गुण श्रेणी उदय से, उदय के समय से शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि आवली के ऊपर गुण श्रेणी।
गुण श्रेणी अभी जो नया दिया जाएगा।
हाँ।
वो आवली के ऊपर, क्योंकि उसका उदय नहीं है।
हाँ। उसका उदय नहीं है इसलिए।
हाँ, उदय आदि गुण श्रेणी, पर वो पहले ऑलरेडी उनकी गुण श्रेणी थी, अब वो गुण श्रेणी उदय के समय तक पहुंच गई है, तो दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा जो पहले उसमें दिया था। फिर अभी जो नया जो दिया जाएगा, तो उदयावली के ऊपर से थोड़ा कम, फिर असंख्यात गुणा बढ़ते हुए दिया जाएगा। ताधे चेव, यानी उसी समय की बात है। ओक्कड़ी उण कोहम तिविहम अपि आवलीय बाहिरे गुणसेड़ी इदरेसिम कम्माणम गुणसेड़ी निखेवेन सरिसीये निखिवदी तदो शेषे शेषे निखिवदी। उसी समय तीन प्रकार के क्रोध का आकर्षण करके उसे इतर कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के समान उदयावली बाह्य गुणश्रेणी में निक्षिप्त करता है। यानी अन्य का भी उदयावली के बाहर निक्षिप्त हो रहा है, ये ख्याल में आ गई ना बात। तथा प्रत्येक समय में शेष शेष में निक्षेप करता है। एक एक गल जाएगा तो जितने बाकी रहेंगे उसमें गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। एक एक निषेक उदयावली में चलता है। यह सूत्र गतार्थ है, यानी सूत्र का अर्थ पहले ही बता चुके, बाद में सूत्र बताया। एदम नाणत्तम माणेन उवठिदस्स उवसामगस्स तस्स चैव पडिवद माणगस्स। मान से श्रेणी पर चढ़कर गिरने वाले उसी उपशामक की प्ररूपणा में यह नानापन है। यानी जिसको हम कहते हैं ना, अभी तात्पर्य बताया, यही उसमें ना नानापन, नानापन मैं अभी गई नहीं नीचे। हाँ, आप आगे पढ़ कर गए, मैंने तो अभी खाली सूत्र पढ़ा है, अब पढ़ेंगे क्रम से। क्रोध से चढ़े हुए उषाम क करो, म हुए ना, उषाम क की प्ररूपणा की अपेक्षा, यानी उसके कंपैरिजन में मान से चढ़े हुए उपशामक की चढ़ने उतरने रूप अवस्थाओं में यह अनंतर कहा गया, यानी अभी अभी पूर्व में कहा गया नानापन जानना चाहिए। चढ़ने वाले का भी नानापन बताया था, उतरने वाले की भी बताया। और इस नानापन का नानप हुआ है ना, नानापन को विस्तार रुचि वाले श्रोताजनों के अनुग्रह के लिए विस्तार से कहा है। एक होते हैं संक्षेप रुचि वाले, एक होते विस्तार रुचि वाले, यानी विस्तार से समझाए तो अच्छा लगता है और एक थोड़े में समझाए तो समझ जाते हैं, उनको विस्तार अच्छा नहीं लगता, उनको और दूसरे आगे का पढ़ना होता है। इस नानापन को विस्तार रुचि वाले श्रोताजनों के अनुग्रह के लिए विस्तार से कहा। अब संक्षेप रुचि वाले श्रोताओं के अनुग्रह के लिए, क्योंकि गुरुवर होते हैं तो दोनों प्रकार के शिष्य होते हैं उनके पास, उसी को संक्षेप से बतला देंगे इसका ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। एवं ताव व्यासेन नानत्तम एतो समासन्नानत्तम वत्त इस्सामो मैंने कहूंगा। पहले यह नानापन विस्तार से कहा, एतो समासन्नानत्तम, अब संक्षेप में इस नानापन को बतलावेंगे। व्यासेन अर्थात विस्तार से इस नानापन की प्ररूपना की। अब इसी का संग्रह करके थोड़े अक्षरों द्वारा ही ज्ञान कराएंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। समास से वो समूह कर दिया उसका, वहाँ संग्रह करके लिखा ना उन्होंने नीचे, संग्रह करके थोड़े अक्षरों में बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, उसी का अर्थ वो हो जाता है विशेषार्थ। अभी विशेषार्थ में फिर दोबारा ये सारा समझाएंगे। नियम यह है कि जो क्रोध कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है उसके क्रम से चारों कषायों का उदय होता है, यानी पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। उसके चढ़ते समय क्रोध, मान, माया और लोभ इस क्रम से कषायों का उदय होता है, किंतु उतरते समय यह क्रम बदलकर लोभ, माया, मान और क्रोध इस क्रम से उदय होता है। जिस क्रम से उपशमित किया था उसके उल्टे क्रम से अनुपशमित किया जाता है। इसलिए अप्रमत्त संयत से लेकर सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक का काल 5 भागों में बढ़ जाता है। उसमें भी अपूर्वकरण गुणस्थान तक चारित्र मोनिय के किसी भी कर्म की उपशामना नहीं होती, इसलिए यह यहाँ विवक्षित नहीं है। कहाँ से लेंगे हम? अनिवृत्तिकरण से लेकर। अब शेष रहा अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय का काल, सो उसमें भी सूक्ष्म सांप्राय का काल तो मात्र सूक्ष्म लोभ का है। किसी भी कषाय के उदय से जीव श्रेणी पर चढ़े उसके सूक्ष्म सांप्राय में एकमात्र सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है, यानी किसी भी उदय से चढ़े तो 10वें गुणस्थान में कोई अंतर नहीं, सबका समान है। किंतु अनिवृत्तिकरण के काल के 4 भाग हो जाते हैं। एक है क्रोध का काल, मान का काल, माया का काल और लोभ, बादर लोभ का काल। अब क्रोध के उदय से श्रेणी जो श्रेणी पर चढ़ता है उसका मात्र क्रोध के काल तक ही उदय रहता है और इस काल के भीतर वह 9 नौकषायों और अप्रत्याख्यानावरण आदि 3 क्रोधों को उपशमाता है। हाँ पहले है ना, क्योंकि पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर 7 नौकषाय एक साथ, और बाद में उसके उदय के काल में ही क्रोध का उपशमने का कार्य भी चल रहा है उसका। केवल नवक बंध वाले वो उतने रह जाएंगे, बाकी सब उपशमित हो जाएंगे। इसके बाद उसके मान का वेदन काल प्रारंभ हो जाता है जिसके भीतर वह 3 प्रकार के मान को उपशमाता है। अब ये नवक बंध को यहाँ गौण करा। इसके बाद उसके माया का वेदन काल प्रारंभ हो जाता है जिसके भीतर वह 3 प्रकार की माया को उपशमाता है चाहिए। चौथा बादर लोभ का वेदन काल है। इसके भीतर वह अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण दो लोभों के साथ बादर संज्वलन लोभ को भी उपशमाता है। जो क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है उसकी अपेक्षा यह व्यवस्था है। ये तो उन्होंने पहले फिर दोबारा सब बता दिया। अब मान की अपेक्षा से श्रेणी पर चढ़ने वाले की अपेक्षा से विचार करने पर उक्त काल के तीन भाग हो जाते हैं। कैसे तीन? मान का काल। हाँ, क्योंकि वहां क्रोध का और मान का मिलकर था, अकेले मान का हो गया। तो मान का वेदक, माया का वेदक और लोक का वेदक तथा माया की अपेक्षा विचार करने पर उक्त काल के दो भाग हो जाते हैं। इक्वल नहीं हो गए, जो कोई उसका प्रपोर्शन होगा। और लोभ की अपेक्षा विचार करने पर पूरा काल एकमात्र लोभ के वेदन का होता है। यानी शुरू से ही जो प्रथम स्थिति बनेगी अकेले लोभ की बनेगी, इतनी बड़ी। इस प्रकार इस काल को ध्यान में रखकर विचार करने पर जिस नानापन की यहाँ पर प्ररूपना की जा रही है वह समझ में आ जाती है। उदाहरणार्थ, क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जितना क्रोध का वेदन काल और इसके बाद जितना मान का वेदन काल है, इन दोनों को मिलाकर जितना काल होता है वह सब मान के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव का मान का वेदन काल हो जाता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि क्रोध के उदय से जो श्रेणी पर चढ़ता है वह अपने उदय काल में जिन प्रकृतियों की उपशमना करता है, मान के उदय से जो श्रेणी पर चढ़ता है वह भी उन प्रकृतियों का मान के उदय काल में जितना क्रोध का वेदन काल बतलाए हैं उतने ही काल के द्वारा उपशमना करता है। देखो नीचे का ये जो टेबल देखेंगे, फिर बाद में बाकी चार लाइन बाद में पढ़ेंगे। देखो, उपशम श्रेणी पर चढ़ने की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण में क्या होता है? तो पहले में पहले कॉलम में क्या लिखा है? क्रोध से श्रेणी चढ़ने वाले के उपशमाई गई प्रकृतियां, तो उसका क्रोध वेदन काल पहले चलेगा। और क्रोध वेदन काल में पहले वो नौ नौकशाओं को उपशमाया और तीन क्रोधों को उपशमाया। बाद में मान वेदक काल में तीन मान को, माया वेदक काल में तीन माया को, और लोभ वेदन काल में तीन लोभ को। अभी लोभ वेदन यानी पूरा दोनों का नववेद का मिलकर यहाँ लेना चाहिए। तीन लोभ को उपशमाया जो बताया था, यहाँ कृष्टि की बात गौण करके ही कथन हुआ है। ऊपर तो उन्होंने अनिवृत्तिकरण में लिखा है, परंतु तीनों को उपशमाता है लोभ को कहना होगा तो सूक्ष्म सांप्राय का काल उसमें लेना चाहिए। ख्याल में है ना? बस यहाँ क्या लिखा है, लोभ वेदक काल में तीन लोभ को उपशमाता है। तीन लोभ को उपशमाएगा परंतु वहाँ कृष्टि वाली बाकी रहेगी, लोभ की कृष्टि बनेगी। कुछ बादर लोभ रूप से उपशमाया जाएगा और कुछ की कृष्टि बनेगी, वो दसवें में उपशमित होगी। उसकी बात यहाँ नहीं ली है, बस इतना समझना। अब दूसरा, अभी अभी हमने जो जीव देखा, मान से चढ़ने वाले की उपशमा गई प्रकृतियां, तो ये पूरा ही मान वेदक काल पहले वाले का क्रोध का और मान का मिलकर जितना है इस अकेले के मान का है। और जितने पहले अंतर्मूर्त में क्रोध वेदक वाले ने नौ कषाय और तीन क्रोध को
उपशमाया
था
वही काल में,
उसी काल में इसने भी उपशमाया और आगे के रिमेनिंग काल में तीन मान को उपशमाया। डिफरेंस क्या हो, उसके उदय में हो, बाद में माया और लोभ वेदक काल में माया और लोभ को उपशमाने का कार्य वैसे होगा। यही पर तीन मान को कहाँ उपशमाया? नौ नौ कषाय है, नौ नौ कषाय नहीं है, नौ नौ कषाय यानी तीन वेद और छह नौ कषाय। अच्छा है, पूछ रहे नहीं तो क्या है, थोड़ा डिफरेंस समझ में हो जाता है तो आगे वो कंफ्यूजन चलता रहता है। नौ नौ कषाय की बात, अब ऊपर का बाकी हिस्सा पढ़ लेते पहले। इस प्रकार मान के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के उन प्रकृतियों की उपशामना क्रोध के उदय काल में न होकर मान के उदय काल में हुई, यह नानापन अर्थात भेद यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसी उदाहरण को ध्यान में रखकर श्रेणी पर चढ़ने की अपेक्षा और श्रेणी से उतरने की अपेक्षा सर्वत्र विचार कर लेना चाहिए, जिसका आगे चूर्णी सूत्र और उसकी टीका द्वारा विचार किया जा रहा है। अब हम माया की देखते हैं। माया से जो श्रेणी चढ़ा है शुरू से ही माया का उदय काल चल रहा है शुरू से, तो जितने काल में क्रोध वेदन काल पहले वाला था उतने काल में नौ नौ कषाय तीन क्रोध को उपशमाया। ऊपर वाले जीव ने जहाँ मान तीन मान को उपशमाया था इसने भी उपशमाया, और ऊपर वाले ने जहाँ तीन माया को उपशमाया इसने भी उसी काल में किया। डिफरेंस क्या, इसके पहले से शुरू से वो माया का ही वेदन काल चल रहा है, लोभ में बाद में कोई डिफरेंस नहीं है। अब कोई लोभ से ही श्रेणी चढ़ने वाला जीव होगा, लोभ वेदक काल उसका शुरू से
लोभ,
लोभ तीसरे में लोभ तीन लोभ लोभ वेदक काल। अच्छा, केवल लोभ लिखा है वहाँ लोभ वेदक काल होना चाहिए, माया के आगे लोभ और आगे लोभ तीन लोभ लिखा ना, लोभ वेदक काल। कहीं वेदन काल लिखा कहीं वेदक काल लिखा, ठीक है समझ में। अब जो लोभ वेदक वाला है शुरू से ही उसका लोभ का ही वेदन उसका उदय चल रहा है, पहले अंतर्मुख में नौ नौ कषाय तीन क्रोध तीन मान तीन माया तीन लोभ, इस तरह से क्रम से उपशमाने का कार्य तो वैसा क्या वैसे हो गए, डिफरेंस इसका उदय शुरू से लोभ का ही चल रहा है, इतनी उसमें डिफरेंस। ऐसा कुछ नहीं है किसी, हाँ आपका प्रश्न ऐसा है, देखो इसका तेजल का प्रश्न है कि क्रोध से चढ़ता है कोई मान माया लोभ से चढ़ता है उसके विशुद्धि में कोई डिफरेंस है क्या, तो कोई नहीं है, किसी भी कषाय के उदय से चढ़े सबके परिणाम एक लेवल के, यानी विशुद्धि का प्रमाण समान है, कषाय में डिफरेंस है, योग में डिफरेंस होगा, कषाय में डिफरेंस होगा, जीवों की जो हाई बॉडी संस्थान वर्ण वगैरह जो कुछ उसमें डिफरेंस होगा, परंतु संस्थान अलग अलग हो गए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
बी2बी इसे देखे कम विशुद्धि के साथ क्रोध का पहले उपशमन हो जाता है और ज्यादा विशुद्धि के साथ लोभ का उपशमन होता है,
होने दो ना, मगर किसी भी उदय से है उपशमने का कार्य उसी पॉइंट
है, तो भी
उपशमने का कार्य उसी लेवल पर हो रहा है, उदय से डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये बात बताना है।
उदय से नहीं पर
उदय के कारण डिफरेंस नहीं,
क्रोध का उपशमन पहले हो गया,
तो कौन से विशुद्धि से किसका उपशम होता है वो बात अलग है, वहाँ उपशमने की बात है और यहाँ उदय की बात है, ख्याल में ही ना। हाँ ये है, जहाँ जिसका उपशमन पूर्ण हो जाता है वहाँ उसका बंधन रुक जाता है, क्रोध का उदय था या मान का माया का जिसका किसका शुरुआत में अंतर्मूर्त तक चारों का ही बंद हो रहा था, जिस स्थान पर तीन क्रोध उपशमित हुए उस स्थान से लेकर आगे क्रोध का बंध नहीं होगा, मान माया लोभ का होगा, उदय किसी का भी होने दो अन्य तीन में से, जहां मान पूरे उपशमित हो गए अभी मान का बंध भी रुक गया है, अन्य दो का बंध चलेगा, यानी उदय किसी का भी होने दो, जहां जो कषाय उपशमित हो गई है उसके बाद उसका बंध रुक जाएगा, उतरते समय वहीं पर उसका उदय शुरू हो जाएगा। अभी टेबल के नीचे पड़ेंगे। इस संदृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है क्रोध मान माया और लोभ के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के इनमें से किसी कषाय के उदय में कब किन प्रकृतियों की उपशमना होती है उतरने की अपेक्षा भी इसी न्याय से विचार कर लेना चाहिए। उतरते समय भी उसी का उदय चलता रहेगा, उसका आधा हो गया और उसी काल में दूसरे का और कषाय का उपशमना चल हो जाएगी, टेबल तो यही है, उल्टे क्रम से ले लेंगे तो हमको कहाँ किसका उदय चलता है वो बात ख्याल में आएगी। आगे तम जहाँ वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, वो फिर भी बता रहे हमें। पुरिस वेदयस्य मानेन उवठिदस्य उवसामगस्य अधापवत्त करणम आदिम कादुन जाव चरिम समय पुरिस वेदोत्ति नत्थि नानत्तम। मान के साथ श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेदी उपशामक के, ये सभी कथन अभी तक तो पुरुष वेद वाले के ले रहे। पहले पुरुष वेद और क्रोध लिया था, पुरुष वेद और मान को ले रहे। तो मान के साथ श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेदी उपशामक के अध प्रवृत्तकरण से लेकर पुरुष वेद के अंतिम समय तक नानापन नहीं है। ये फिर संक्षेप वाले के साथ लिए फिर दोबारा यही बात बता रहे, पहले तो विस्तार से बता चुके थे। शंका, यहाँ नानात्व के अभाव का क्या कारण है? नानापने का अभाव यानी समानता है और समानता नहीं। समाधान, कहते हैं पहले की विधि के अनुसार ही अध प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण को बिताकर पश्चात अनिवृत्तिकरण के काल के संख्यात बहुभाग के उसी क्रम से व्यतीत होने पर तथा उसी प्रकार अंतरकरण क्रिया को संपन्न करके, अंतर और करण एक शब्द चाहिए, यानी अंतर करने की क्रिया भी वैसे ही होगी। नपुसक वेद आदि के क्रम से नौ कषायों को उपशमाता है, यानी पहले नपुसक वेद को, फिर स्त्री वेद को, फिर छह नौ कषाय और पुरुष वेद सात को। इस कारण से इस विषय में कुछ भी नानापन नहीं है ऐसा सूत्र में कहा है। विशेषार्थ, जैसे क्रोध संज्वलन के उदय के साथ पुरुष वेदी के उपशम श्रेणी पर चढ़ने पर नौ कषायों की उपशामना जिस क्रम से होती है, मान संज्वलन के उदय के साथ पुरुष वेदी के उपशम श्रेणी पर चढ़ने पर नौ कषायों की उपशामना भी उसी क्रम से होती है। नौ कषायों की उपशामना में कोई अंतर नहीं है, वो अंतर अलग अलग वेद से चढ़े हुए में होगा। संज्वलन में एक पुरुष वेद को फिक्स रखो तो वहां तक तो कोई असमानता नहीं है, इसलिए दोनों की यहाँ तक की प्ररूपणा में कोई अंतर नहीं है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य। अब पढ़म समय अवेदग पहुड़ी जाव पोहस उपसामणद्धा तावन आनत्तम। अवेदक के प्रथम समय से लेकर जब तक क्रोध का उपशामना काल है तब तक नानापन है, ऐसा कहने पर मान का वेदन करता हुआ क्रोध को उपशमाता है, यह नानापन जानना चाहिए। क्या कहते हैं, डिफरेंस क्या है? पहले वाला जीव क्रोध का वेदन करता हुआ क्रोध को उपशमाता था और यह जीव मान को उपशमाता, मान का वेदन करते हुए क्रोध को उपशमाता। फिर से, पहले वाला जीव क्रोध के उदय है और क्रोध का उपशमाता है, ये मान के उदय के साथ क्रोध को उपशमाता है, यह नानापन है। विशेषत, पहला क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़ा था, यह मान के उदय से श्रेणी पर चढ़ा है, एक अंतर तो यह है। और जो मान के उदय से श्रेणी चढ़ता है उसके क्रोध अनुदय प्रकृति होने से उसकी प्रथम स्थिति नहीं होती, यह दूसरा अंतर।
ये अवली प्रमाण भी,
अवली प्रमाण होगी उसको होती है ऐसा नहीं कहा, वो गौण है। ये अवली प्रमाण होती है वो तो एक एक निषेक उदय में आकर नष्ट हो जाता है, ये तो सभी जो अनुदय रूप प्रकृतियां हैं उसकी अवली मात्र पहली स्थिति होती है और बाकी की अंतर्मूर्त यथा योग्य अंतर्मूर्त होती है। तो वो अवली प्रमाण को यहाँ मत गिनो, तो उसकी वो मत गिनो, उसकी प्रथम स्थिति नहीं होती क्योंकि ना उसमें आगल होने वाला है, ना प्रत्यागल होना है, ना उसका उदय होने वाला, कुछ नहीं, वो तो नहीं के बराबर। तो क्रोध की तो नहीं होगी, मान माया मान की तो होगी, उसकी उदय प्रकृति है, माया और लोभ की होगी कि नहीं होगी?
अभी नहीं होगी,
अभी नहीं होगी, बाद में होगी जब उसका समय आएगा,
अभी हो जाएगी पीछे
उसका वेदन काल होगा, तब जाके उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। क्रोध को उपशमित करने के बाद इसकी पहली स्थिति नष्ट होते होते निकल जाएगी और उसके नई बनेगी। मान माया लोभानम वो सामणधाय नथी नानत्तम, इसके ने मान से चढ़े हुए के मान माया और लोभ के उपशमना काल में कोई नानापन नहीं है, क्योंकि पूरी प्ररूपणा में नानापन के बिना यहाँ वहाँ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से पाई जाती है। ये टेबल में भी जो हमने देखा था आगे कुछ डिफरेंस नहीं है।
ये अधिवृत्तिकरण के काल में परिणामों की समानता में ये जो अलग अलग कषाय के उदय के साथ चलेगा वो नानापन गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? क्योंकि
नानापन उदय में है।
हाँ, बराबर है,
कषाय उनके उदय में है।
हाँ,
वो परिणाम जो विशुद्धि रूप परिणाम, विशुद्धि की समानता लेना है।
अच्छा, परिणामों की समानता,
योग ना योग की समानता ना कषाय की है। परिणाम किसको कहना? विशुद्धि को कहा। परिणामों की समानता का अर्थ होता है विशुद्धि की समानता।
हाँ।
क्रोध मान माया लोभ या वेदों में डिफरेंस है, उसको परिणामों की डिफरेंस नहीं कहते। सबके परिणाम समान विशुद्ध है इतना लेना। यानी उसके जो अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा उसकी समानता है। 110 पृष्ठ पर विशेषांक, पुरुष वेद और मान संज्वलन के उदय से जो श्रेणी पर चढ़ता है वह उसी विधि से मान माया और लोभ की उतने ही काल में उपशमना करता है जिस विधि से पुरुष वेद और क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव जितने काल में उनकी उपशमना करता है। इसलिए यहाँ नानात्व का निषेध किया है। वसंते दानिम नत्थि चेव नानत्तम, इनके उपशांत होने पर भी कोई नानापन नहीं है। अभी सभी उपशमित हुए हैं, ग्यारहवें गुणस्थान में भी कोई नानापन नहीं है। यह सूत्र सुगम है। तस्सचैव मानेन वठीयुण तदो परिवधि दूण लोभम वेदेन तस्स नथी नानत्तम। अभी ये उतर रहा है, पहले उपशमित हुआ था ने ग्यारहवें गुणस्थान में था, अब उतरने लगा। तो कहाँ से नानात्व शुरू होगा वो बताएंगे। मान कषाय के साथ श्रेणी पर चढ़कर और वहां से लौटकर लोभ का वेदन करने वाले उसी जीव के भी नानापन नहीं है। ये संक्षेप से फिर दोबारा वही बात बता रहे हैं, लोभ वेदक काल में कोई डिफरेंस नहीं है। यह सूत्र सुगम है। मायम वेदेन तस्य नत्थि नानत्तम, माया का वेदन करने वाले उस जीव के भी नानापन नहीं है। यह सूत्र सुगम है। मानव वेदे मानस ताव नानत्तम जाव कोहोन ओकड्डिज्जति, कोहे ओकड्डिदे कोदस्स उदयादि गुणसेरी नत्थी मानोचेव वेदिज्जति। मान का वेदन करने वाले उसी जीव के तब तक नानापन है जब तक क्रोध का आकर्षण नहीं करता।
तब तक नानापन है,
नानापन है ना। अभी यहाँ नौ की नौ गुण श्रेणी करेगा और वो गलितावशेष करेगा। हाँ। क्रोध वाले ने नहीं की थी। क्रोध का आकर्षण करने पर क्रोध की उदयादि गुण श्रेणी नहीं होती, ये भी डिफरेंस रहा। यह मान का ही वेदन करता रहता है। मान के वेदन के पहले समय में मान की उदयादि हुई थी, वो क्रोध वाले ने भी उतना ही किया था। वो मान की हो गई, मान के उदय से चढ़ने वाले की, मान के उदय से चढ़ तभी तो। तब तक डिफरेंस है का है कह रहे, नहीं है नहीं कहते, है कहते। तब तक नानापन है, इसने नौ की नौ समान की थी और गलित शेष की थी,
उसने
उसने नौ की समान की थी परंतु अवस्थित की थी। इसने ज्ञानावरणादि के समान की, उसने नहीं की समान, छोटी थी उसकी। जब क्रोध के उदय में आया तब जाके उसने समान की थी और फिर गलित शेष बनाई थी। क्रोध वाले मान वाले ने क्या किया, मान का उदय होते ही यहाँ पर गुण श्रेणी तो बढ़ाई, गलित शेष हो गई, ज्ञानावरण के समान बना दी और अंतर पूर्ण कर दिया। यानी सारा नानत्व यहाँ पर है, ये बता रहे ना, मान का वेदन करने वाले जीव के तब तक नानापन है। कब तक वो नानापन चलेगा?
जब
तक क्रोध का आकर्षण नहीं करता। क्रोध का आकर्षण करने के बाद वो नानापन मिट जाएगा, वो डिफरेंस तब तक ही रहेगा। देखो फिर से, क्रोध का उतरने वाला जीव ले रहे, पहले लोभ का उसने गुण श्रेणी बनाई थी, फिर माया की भी, इसकी भी बढ़ जाती है, फिर मान की, इसकी भी बढ़ेगी, तब
अंतर पूरा किया,
और फिर क्रोध की, इसकी भी बढ़ेगी। यानी इसकी तीन, इसकी तीन, इसकी तीन, इसकी क्रोध के उदय से चढ़ा था। जब क्रोध का उदय हुआ था तो ये बाकी ज्ञानावरणादि की थी ना, उस समय जितनी बाकी थी उतनी इनकी सबकी बन गई, और तभी ऊपर का अंतर भी पूर्ण कर दिया। ये क्रोध सही चढ़ने वाले, मान सही चढ़ने वाले ने क्या किया, जब इसका नंबर आया था ये तो उपशमी थी है। जब मान का उदय शुरू हुआ था तभी उसने इतनी बड़ी की थी अन्य के समान, और ये उदय के समय से लेकर उसकी गुणश्रेणी हो जाएगी,
गलित अवशेष हो
गए। अब जब क्रोध का नंबर आएगा तो क्या होगा, तब तक इसकी गलित शेष जितनी बचेगी, इतनी जितनी बाकी है, इसकी गलित शेष बनी थी तो उसकी भी तभी इसके समान इतनी हो जाएगी क्रोध के उदय आने पर।
अवली के ऊपर गुण श्रेणी रखता होगी क्रोध की,
ये उसके डिफरेंस होगा। ऊपर की हम लेवल देख रहे हैं वो सबकी समान, मगर ये गलित शेष तो चलती रही है, यही बात यहाँ बता रहे हैं। उदय के समय से नहीं होती, उदय के ऊपर से, उदयावली के ऊपर से वो गुण श्रेणी रूप से रचना होगी। क्रोध के उदय से चढ़ने वाले जब उतरता है तो उसकी गुणश्रेणी उदय के समय से होती है, मान के उदय से चाहिए, उसका मान का ही उदय चल रहा था तो गुणश्रेणी का जो निक्षेप है उदयावली के ऊपर से होगा, क्रोध का। परंतु गुणश्रेणी की ऊपर की लेवल सबकी समान है। तब तक नानापन है जब तक क्रोध का अपकर्षण नहीं करता, क्योंकि क्रोध का अपकर्षण करने पर उतने ही जितनी उसने पहले बनाई थी क्रोध वाले ने, उतनी इसकी भी गुणश्रेणी बनेगी। डिफरेंस कह रहा इसकी उदय आदि थी उसकी और इसकी नहीं, इतना ही डिफरेंस है। तो कहते जब तक क्रोध का अपकर्षण नहीं करता तब तक नानापन है। तो क्या क्या नानापन हुआ, तो उसने तभी से लेकर ज्ञानावरण जितनी गुणश्रेणी बनाई एक बार, अंतरपुर किया दूसरी बार, तो उसकी उदयादि तो उसने भी उदयादि बनाई थी, परंतु उसका इतना बड़ा आयाम नहीं था, इसका आयाम पहले से यहीं से इसका आयाम बढ़कर डिफरेंस, मान से उतरने वाले का डिफरेंस बढ़। क्रोध के उतरने वाले ने मान का जब उदय शुरू हुआ तो अंतर को पूरा नहीं किया था, जब तो वो जाके नीचे आया, क्रोध का उदय शुरू हुआ तब जाके उसने अंतर को पूरा किया, ये डिफरेंस है। हाँ, अंतरपूरण अलग अलग होता है, यानी हरेक कषाय का अंतरपूरण
अपने अपने
जिस कषाय अपने अपने नहीं
जिस कषाय के साथ चढ़ा है,
जिस कषाय के साथ चढ़ा है उसी समय जो अनुपशमित है उन सब का अंतर पूरा दिया जाता है। लोभ का भी अभी उच्चर होगा जब क्रोध का शुरू हो जाएगा। देखो क्रोध सहित जो चढ़ रहा था
क्रोध के उदय के साथ उसका अंतर पूर्ण होगा,
ये उसका अंतर था, ये अंतर था ना, अभी नीचे कुछ नहीं था, समझो। अनुपशांत जाने अपकर्षण शुरू हुआ, अनुपशांत हुए बिना अंतर को पूरा गया कैसे? जब क्रोध को अनुपशांत करेगा, परंतु तभी अंतर नहीं पूरा हुआ। अनुपशांत किया तो उसके केवल वह यहाँ पर पहली स्थिति बनी, अनुपशांत होकर स्थिति बनी, इतना ही लिया, परंतु उसका गुणश्रेणी इतना था, तभी अंतर को पूरा नहीं था। जब माया आ गई तो ये भी यहाँ तक चढ़ गए, मान आए और ऊपर चढ़ गए, क्रोध आए तो और सबके ऊपर यहाँ तक हो गई गुणश्रेणी, और तब जाके अंतर को पूरा। हमने कल पढ़ा था ना, पहले हमें ऐसे ही लगा था कि एक एक यहाँ मात्र वेदों का अंतर पूरा नहीं है। उदयादि का अर्थ थे उदय से लेकर, उदयादि यानी उदय के समय से आदि कहाँ तक? गुणश्रेणी के शीर्ष तक, उदय से लेकर शीर्ष तक, और बाकी की गुणश्रेणी, गुणश्रेणी यानी कहाँ कहाँ वो निक्षेप दिया जाता है, तो कहते उदयावली छोड़ दो, मान लेते पहले की उदयावली भी ऐसी दिख रही गुणश्रेणी के कारण। अभी जो नया माल दिया जाएगा तो इसमें जो नया माल दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, पर यहाँ से वो गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। ये जो है नीचे से लेकर, और उदय आदि में कैसे दिखेगा? क्योंकि पहले वाली ऐसी है ना थोड़ी, और ऊपर फिर ऐसा दिखेगा, ये उदयावली के ऊपर, और ये उदय के समय से लेकर। ये पहले पुराने जमाने की बाल्दे आदि थी ना वो, और ये अभी की नहीं
मेटल की
है,
मेटल की,
मेटल की होती थी नीचे ऐसा थोड़ा
सपोर्ट।
हाँ, ये 249 हम पढ़ रहे थे ना, क्रोध की उदयादि गुणश्रेणी नहीं होती, यह एक नानापन है। यानी जब क्रोध का मान वेदक वाले के उतरते समय, जब वो क्रोध के काल तक पहुंच जाता है, क्रोध का आकर्षण हो जाता है, यानी वो उपशमित था, वो अनुपशमित हो जाता है, उसकी गुणश्रेणी भी बनती है, परंतु उदय के समय से नहीं बनती, फिर भी उसको भी गलित शेष कहेंगे। तथा मान का ही वेदन करता हुआ करता है, यह दूसरा नानापन है। इस प्रकार ये दो नानापन यहाँ जानने चाहिए। विशेषार्थ, यह मान कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ा है, इसलिए उतरते समय तक इसके क्रम से लोभ, माया और मान का उदय होता है, क्रोध का उदय नहीं होता। कब तक? वो सारे जब हम श्रेणी की बात करें ना, तब तक। इसलिए इसके एक तो क्रोध का आकर्षण करने के काल में भी क्रोध की उदयादि गुणश्रेणी नहीं होती। अन्य कषायों की क्या थी? जहाँ जिसका उदय शुरू हुआ वहाँ उसकी उदयादि गुणश्रेणी बनी थी। यहाँ इसका क्रोध का आकर्षण तो हो गया, परंतु गुणश्रेणी उदयादि से नहीं होगी, क्योंकि उसका उदय नहीं, अनुदय ही है। एक नानापन तो यह है, और दूसरे यह अंत में मान के वेदक वेदन काल से लेकर उसी का वेदन करता हुआ, यानी मान ही का वेदन करता हुआ श्रेणी से उतरता है। श्रेणी में इसके क्रोध का वेदन नहीं होता। श्रेणी में शब्द डालना, बाद में तो होगा, बाद में सभी क्रोध मान माया लोभ अंतर मुनते वो पलटते रहेंगे। इस प्रकार दूसरा नानापन यह है। ये दो डिफरेंस समझ में आई बात? यानी क्रोध का वेदन इसके होगा ही नहीं, श्रेणी की बात चल रही है, और इसका वेदन नहीं करते हुए ही क्रोध का आकर्षण होगा, और उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी होगी, उदयादि नहीं होगी। 111 पृष्ठ पर, एदाणी दोन्नी नानत्ताणी कोधादो ओकड्डिदादो पाए जाव अधापवत संजदो जादो ती। क्रोध के अपकर्षण से लेकर अधः प्रवृत्त संयत होने तक संयत के ये दोनों नानापन होते हैं। क्रोध के अपकर्षण से लेकर यानी श्रेणी उतरते समय जहाँ क्रोध का उपशम मिट गया तो तीनों क्रोध का अपकर्षण हुआ, उसकी गुणश्रेणी बनी उदयावली के ऊपर वगैरह वगैरह, तो ये जो नानापन, परंतु उदय किसका चलेगा?
मान
का। तो ये अध प्रवृत्त का अर्थ होता है अभी तक अनिवृत्ति करण में है, अब यहाँ से जाके अपूर्व करण में जाएगा और अपूर्व करण के बाद अधकरण उल्टे क्रम से लेना है ना, अध प्रवृत्त करण में आ जाएगा। तो ये अध प्रवृत्त करण को यहाँ अध प्रवृत्त संयत कह दिया है, उसका सातवा गुणस्थान, परंतु वो अभी करण का चल रहा है, उल्टे क्रम से वो करण ही चल रहा है उसका, इसलिए अध प्रवृत्त करण कह दिया। और उस जीव को कहेंगे अध प्रवृत्त संयत। तो अध प्रवृत्त संयत होने तक यानी उस अवस्थान को, अवस्था को प्राप्त होने तक संयत के यानी उस मुनिराज के ये दोनों नानापन होते हैं। ये नानापन वहां तक चलता रहता है कि गुणश्रेणी उदय के ऊपर से है और उदय मान का ही चलता है। मान के उदय से श्रेणी पर चढ़कर पुनः नीचे उतरकर जब तक अध प्रवृत्त संयत्न नहीं हो जाता तब तक मान का उदय नष्ट नहीं होता। इसलिए इस अवस्था विशेष में यह अनंतर कहा गया नानापन जानना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विस्तार और संक्षेप से इस नानापन को स्पष्ट करके यानी ये जो दोबारा ये सारे सूत्र पढ़े वो संक्षेप रुचि वाले के लिए डायरेक्ट सूत्र सूत्र में उन्होंने बात बताई। पहले इसी को देखा था हमने विस्तार से। अब माया के साथ श्रेणी पर चढ़े हुए उपशामक के नानापन के निरूपण करने के लिए इस सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। अब ये शुरू से ही माया के उदय से चढ़ेगा, तो शुरुआत में वो नौ नौ कषायों को उपशमाएगा, फिर क्रोध को उपशमाएगा, फिर मान को उपशमाएगा, फिर तीन प्रकार के माया को उपशमाएगा, तब तक माया का ही उदय चलेगा। जैसे वहां मान के बारे में बताया, यहाँ क्रोध माया के बारे में समझना, अब उसको पढ़ेंगे। माया है वठिदस व सामगस केद्दे ही मायाए परमठिदि। माया से श्रेणी पर चढ़े हुए उपशामक के माया की प्रथम स्थिति कितने आयाम वाली होती है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न चिन्ह चाहिए, ये दंड वाला है उसके बदले। यानी उसकी प्रथम स्थिति कितनी बनेगी, यहाँ प्राकृति, यहाँ दोनों जगह प्रश्न चिन्ह चाहिए। यह सूत्र सुगम, इसका उत्तर तो आगे के सूत्र में बता रहे। तो कहते हैं जाओ कोहे न उठिदस कोधस च मानस च मायाए च परमथिदियो ताओ तिन्नी परमथिदियो संपिंडिदादो संपिंडिदाओ। इकट्ठा करने पर मायाए उठिदस मायाए परमथिदि। क्रोध से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के, जीव हुआ है, जीव के क्रोध मान और माया की जितनी प्रथम स्थिति होती है उन तीनों प्रथम स्थितियों को मिलाकर माया से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के माया की प्रथम स्थिति होती है। क्रोध चढ़ने वाले ने क्या किया, चढ़ने वाले की बात है, अभी उतरने वाले की नहीं, तो पहले में पहले यहाँ उसने अंतर कर दिया था। तो अंतर के नीचे पहली, अंतर करके जो उदय रूप है उसकी पहली स्थिति बनाता है। तो क्रोध का उदय था तो उसने पहली स्थिति में ऐसी गुणश्रेणी जो कुछ है वहां रचना की। जब वो गलते 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 ये आवली रहेगी तब इसका उदय मिट गया
मान की,
और मान की उसने गुणश्रेणी यहाँ पहली स्थिति बनी, ऊपर के नीचे आकर वहां बन जाती। ये गलते 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 इतना शेष रहा यानी पहले उसके क्रोध की इतनी थी, फिर ये मान की थी, फिर ये माया की हुई और ये लोभ की हुई। अब जो मान के उदय से चढ़ेगा पहले से इतनी स्थिति बनाएगा, जो माया के उदय से चढ़ेगा पहले से इतनी लंबी स्थिति बनाएगा, और लोभ के उदय से चढ़ेगा उसकी प्रथम स्थिति पहले से ही इतनी लंबी हो जाएगी, जो क्रोध मान माया और लोभ वेदक काल के समान इतनी बड़ी लंबी आयाम वाली उसकी होगी। ये हर एक में डिफरेंस है। पहली स्थिति कितनी बनाई, ये क्रोध वाले ने इतनी बनाई, उसके बाद उसने मान की बनाई, उसके बाद माया की बनाई, उसके बाद लोभ की बनाई, इसने भी ऐसे बनाई, इसके बाद इस तरह से बनाई, इसको ऐसा दिखाते, पहले क्रोध की बनाई, फिर नई माया की बनाई, मान की, फिर माया की, फिर लोभ की, और लोभ वाले ने पहले से ही इतनी लंबी लो, यानी अभी हम लोभ की और क्रोध की कंपेयर कर रहे हैं, ये डिफरेंस है।
ये क्रोध के साथ तो चढ़ेगा और जो लोभ के साथ चढ़ेगा उसके दिर्जरा में कुछ फर्क पड़ेगा?
कुछ नहीं,
कुछ नहीं। कसाई से नहीं, विश्वजी से दिर्जरा होती है तो वहाँ पे कुछ
परिणामों से होती है।
हाँ, परिणाम,
और परिणाम विशुद्धि को कहते हैं।
हाँ,
विशुद्धि को कहते हैं। देखो ये सूत्र जो हमने देखा था, हिंदी देखते उसका, क्रोध से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के क्रोध मान और माया की जितनी प्रथम स्थिति होती है उन तीनों प्रथम स्थितियों को मिलाकर माया से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के माया की प्रथम स्थिति होती है। ये हमने लोभ की डायरेक्ट देखी इतनी होती है, और माया की कितनी होगी, यहाँ तक जो है ना, ये तीनों की मिलकर जितनी होगी वो माया की ही डायरेक्ट पहली स्थिति बनाएगा इतनी। तो उसके सहज रूप से ऐसी वहां पर रचना हो जाती है। यह अंतर किए जाने के बराबर माया की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अंतर किए जाने के बराबर यानी अंतर करते ही माया की ही प्रथम स्थिति बनेगी। उस प्रथम स्थिति का आयाम कितने प्रमाण वाला होता है ऐसा पूछने पर क्रोध से श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के क्रोध मान और माया की जो प्रथम स्थितियां हैं उन तीनों को मिलाकर जितना आयाम होता है उतनी यहाँ माया की प्रथम स्थिति होती है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यानी पहले से बड़ी आयाम वाली हो गई, उसने तो एक एक के बाद एक एक की गुण श्रेणी की थी, क्रोध की मिट गई, फिर मान की, फिर माया की, इसका एक झटके में उसने माया की प्रथम स्थिति बना दी। फिर शंका, यहाँ पर इतने बड़े आयाम वाली प्रथम स्थिति कैसे हो गई? उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी प्रथम स्थिति के भीतर तीन प्रकार के क्रोध, तीन प्रकार के मान और तीन प्रकार की माया को उपशामने वाले जीव के उतने आयाम वाली प्रथम स्थिति बिना विवाद के सिद्ध है, क्योंकि इतने काल में वो वेदों को उपशमाए, क्रोध को उपशमाए, मान को उपशमाए, माया को भी, ये सबको उपशमाने के लिए इतना काल तो आवश्यक है। तो इसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं, तदो मायम वेदेन तो कोहम च माणम च मायम च उवसामेदि। इसलिए माया का वेदन करने वाला जीव क्रोध मान और माया को उपशमाता है। ये वेद वाली बात यहाँ तो समान है इसलिए उसको गौण कर दिया है, तो यहाँ उसका माया का ही उदय होते हुए क्रोध को, फिर मान को और फिर माया को उपशमाता है। यह सूत्र सुगम है। विशेषार्थ, क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव केवल क्रोध को उपशमाता है, मान के उदय से श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव क्रोध और मान इन दो को क्रम से उपशमाता है, तथा माया के उदय से श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव क्रम से क्रोध मान और माया को उपशमाता है। एक तो इस प्रकार नानापन बन जाता है, यानी किसके उदय में किसको उपशमाता है इसमें नानापन है। दूसरे, प्रथम स्थिति के अपेक्षा भी यह नानापन बन जाता है, प्रथम स्थिति कितने आयाम वाली बनाई इसमें भी डिफरेंस है। तदो लोभम उवसामेन तस्य नत्थिनानत्तम, तत्पश्चात लोभ को उपशमाने वाले उसे उसी जीव के नानापन नहीं है, क्योंकि बाद में कोई डिफरेंस नहीं रहा मान के बाद। यह मान तक तो एक बड़ी गुण श्रेणी बनाई थी, अभी मात्र ये माया की थी ना लंबी, अभी ये लोभ की करेगा अकेला। इन्हें पहले माया की थी इतनी लंबी, वहां तक डिफरेंस था, बाद में कोई डिफरेंस नहीं रहा। क्योंकि वहां नानापन के बिना प्रकृत प्ररूपना की प्रवृत्ति देखी जाती है, यानी उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, प्ररूपना वही रहती है। इस प्रकार ऊपर चढ़कर पुनः नीचे उतरने वाले इस जीव के जो नानापन संभव है उसका निर्देश करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। ये तो चढ़ने में क्या डिफरेंस था, तो उसका उसी का उदय चलते हुए अन्य सबको उपशमाया था। उतरते समय क्या डिफरेंस होगा वो अभी बताने जा रहे हैं। मायाए उठिदो उवसामे यूनो पुनो पड़िवद माणगस्य लोभम वेदय माणस्य नत्थि नानत्तम। माया कषाय से श्रेणी पर चढ़ा, पुनः कषायों को उपशमा कर गिर कर लोभ का वेदन करने वाले उसी जीव के नानापन नहीं है, यानी लोभ के वेदक काल तक तो कुछ अन्य डिफरेंस नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म लोभ के वेदन करने के काल में नानापन के बिना पहले की प्ररूपना की यहां भी प्रवृत्ति देखी जाती है। विशेषार्थ क्रोध मान और माया इनमें से किसी भी कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़े और उतरे हुए जीव के दसवें गुणस्थान में उनकी अपेक्षा मात्र सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है, इसलिए इन कषायों की अपेक्षा दोनों अवस्थाओं में यहाँ नानापन संभव नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। यानी किसी भी से चढ़े तो सूक्ष्म सांप्रदाय में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है। मायम वेदेन तस्स नानत्तम समझ तिविहाय मायाय तिविहस्य लोहस्य च गुणसेडी निखेवो इदरेहिं कम्मेहिं सरिसो सेसे सेसे च निखेवो। किंतु बाद में माया का वेदन करते हुए उसके नानापन है। अभी नानापन क्यों हुआ, क्योंकि ये माया शुरू से ही माया का वेदन कर रहा था। अब उसकी जो यहाँ पर बनेगी स्थिति गुणश्री उसका आयाम भी बड़ा होगा, अन्य कर्मों जितना अपना अभी हो जाएगा उसका अंतर भी यहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये अभी बताएंगे क्या नानापन है। वह जैसे तीन प्रकार की माया और तीन प्रकार के लोभ का गुण श्रेणी निक्षेप इतर कर्मों के समान होता है। क्रोध के सही चढ़ने वाले का क्रोध का उदय जब शुरू हुआ था तब जाके इतर कर्मों के समान हुआ था। मान सही चढ़ने वाले के जब मान का नंबर आया था उदय का तब जाके इतर कर्मों के समान हुआ था। माया के सही चढ़ने अभी यही इसी समय से लेकर अन्य कर्मों के समान हो गया और उसका अंतर भी यहाँ पूरा किया गया और शेष शेष में निक्षेप होता है। जब अन्य कर्मों के समान होता है तब ये यहाँ से लेकर ही गलितावशेष हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो आयाम भी बड़ा है ना, गुण श्रेणी का आयाम यहाँ लंबा होगा। जैसे चढ़ते समय हमने देखे थे उतरते समय में भी उसी क्रम से हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्यारहवें में गया था तो यहाँ तो सब मिट गए थे, यहाँ मात्र द्वितीय स्थिति रही थी, सभी उपशमित थी। अब क्रम से फिर दोबारा एक एक की गुण श्रेणी बनेगी, सब मिट गया था ना यहाँ पर, अपकर्षण ही नहीं हो रहा था तो गुण श्रेणी रूप से देने का कोई सवाल नहीं था। देखो यहाँ 113 पृष्ठ पर पढ़ रहे 256 नंबर का पॉइंट। क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतरने वाले जीव की माया की प्रथम स्थिति अपने वेदन करने के काल से मात्र एक आवली काल प्रमाण अधिक होती है। अपना वेदक यानी जब क्रोध के उदय से ही चढ़ा था, पहले लोभ का वेदन हुआ फिर माया का, तो माया की गुणश्रेणी जो लोभ की गुणश्रेणी बनी थी ना उससे थोड़ी बढ़कर बनी, वो लोभ की भी उस समय बढ़ेगी और अवस्थित रहेगी। वो कितनी बनी, माया वेदक काल प्लस एक आवली। फिर जब मान का शुरू हुआ तो मान वेदक काल प्लस आवली, और जब क्रोध का शुरू हुआ था
तो
गलित अवशेष वहाँ अवस्थित नहीं रहेगी, बढ़कर बड़ी होगी परंतु अवस्थित नहीं रहेगी। अब हम यहाँ माया की बात करें, माया से चढ़ा है और माया से ही उतरेगा, तो उस जीव के देखो क्रोध से, क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतरने वाले जीव की माया की प्रथम स्थिति अपने वेदन करने के काल से यानी माया वेदक काल से मात्र एक आवली काल प्रमाण अधिक होती है। परंतु यहाँ पर तीन प्रकार की माया और तीन प्रकार के लोभ का गुण श्रेणी निक्षेप ज्ञानावरण आदि कर्मों के सदृश आयाम वाला होकर ऊपर गलित शेष आयाम रूप से प्रवृत्त होता है। ऊपर यानी इसके पश्चात, ऊपर का अर्थ क्या है, इसके बाद। इस प्रकार यह नानापन यहाँ पर जानना चाहिए। इतनी बात ख्याल में आई? शेषेश्च कषाय मायम वेदन वेदन, यहाँ वेदन तो लिखा है ओ किड्डी हिदी, तथा शेष कषायों को माया का वेदन करता हुआ आकर्षित करता है। यहाँ से जो माया वेदक चाल चालू हो गया है अभी माया का ही रहेगा, उसके ना मान का उदय होने वाला ना क्रोध का, ये श्रेणी की बात चल रही, तो उनका अपकर्षण होगा कि नहीं होगा? वे उपशमित थे, वो अनुपशमित होंगे कि नहीं होगी? होगी, अपने अपने काल में होगी, परंतु इसका वेदन तो माया का ही चलेगा। यानी शेष कषायों को माया का वेदन करते हुए अपकर्षित करता है, यह यहाँ दूसरा नानापन जानना चाहिए।
ये माया से जो गुण श्रेणी उतरेगा जो जीव, उसका माया वेदन काल पूर्ण होने के बाद मान का बंध जब भी चालू होगा तभी उसका,
तभी मान का आकर्षण होगा। जिस समय मान का आकर्षण होगा उसकी गुण श्रेणी उदयावली के ऊपर बनेगी,
उसी समय बंध भी चालू
होगा। उसी समय मान का भी एक सौ, और पहले लोभ और माया का होता था, अभी लोभ माया और मान तीनों का ही बंध चालू हो जाएगा। अब यहाँ प्रकृति में किए जाने वाले गुण श्रेणी निक्षेप के आयाम की अवधारणा करने के लिए आगे का सूत्र आया है। तत्थ गुण श्रेणी निक्षेव विधिम च इधर कम्म गुण श्रेणी निक्षेवेण सरिसम काहिदी, क्योंकि माया के साथ उदय ऊपर चढ़ा है, जब उतरते समय माया का शुरू हो गया तब इसका जो गुण श्रेणी निक्षेप है अन्य कर्मों के समान होगा और गलित शेष हो जाए। और वहाँ गुणश्रेणी निक्षेप विधि को इतर कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के समान करता है, क्योंकि गलित शेष गुणश्रेणी के विषय में अन्य प्रकार संभव नहीं है। यानी यहीं से वो गलित शेष भी बन जाती है और अन्य के कर्मों के समान आयाम वाली हो जाए, इतनी बड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। विशेषार्थ यहाँ माया का वेदन करने वाला जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ने के बाद नीचे गिरता है, तब पुनः माया का वेदन करने लगता है, तब उसके जो कार्य विशेष होते हैं, यानी इसके भी पहले लोभ का वेदन काल में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जब माया का वेदन शुरू हो जाता है तब क्या डिफरेंस है वो बता रहे, तो क्या कार्य विशेष होते हैं ना, क्या डिफरेंस है, उनका निर्देश करते हुए बताया है कि सर्वप्रथम वह तीन प्रकार की माया और तीन प्रकार के लोभ का आकर्षण कर, जब माया का उदय शुरू हो जाता है उसी समय ये छह का आकर्षण होकर उसका उनका ज्ञानावरणादि कर्मों के समान गुणश्रेणी निक्षेप करता है। गुणश्रेणी की सबके ऊपर के लेवल एक समान, मन जो उदय रूप है अभी उसी को उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से लिया जाएगा बाकी आवली के ऊपर। किंतु यह गुणश्रेणी निक्षेप गलित शेष होने के कारण प्रति समय जो गुणश्रेणी शेष रहती जाती है उसमें अपकर्षित द्रव्य का निक्षेप करता है, यानी जितने बचेगी उसी में अपकर्षित द्रव्य गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा, तथा क्रमशः नीचे उतरकर माया का वेदन करते हुए ही वह क्रम से तीन मान और तीन क्रोध का भी अपकर्षण कर, यानी उनका उनका समय आता है तब इसका माया का ही वेदन करता हुआ मान को भी अनुपशांत करेगा और क्रोध को भी अनुपशांत करेगा ना, उनका भी अपकर्षण करके क्रम से तीन मान और तीन क्रोध का भी अपकर्षण कर उनका भी गुणश्रेणी निक्षेप शेष कर्मों के समान करता है। पहले उनका कोई अपकर्षण ही नहीं था, जब उनका अपना वेदक काल शुरू हुआ तब उनका अपकर्षण कर लिया और अन्य कर्मों के समान इसकी भी लोभ का तो हो गया ना, कर दिया उसने। देखो 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 माया की बात चल रही, माया के साथ जो उतरता है तो वो पहले क्या करेगा, लोभ को अपकर्षण करेगा। उसमें डिफरेंस नहीं है, नानात्व नहीं है, नानापन यानी डिफरेंस कहाँ से शुरू हो गया, उसका माया का उदय होने पर क्या डिफरेंस हुआ, उसी समय से उसने इतनी बड़ी गुणश्रेणी बनाई अन्य कर्मों के समान और वो गलित शेष हो गया, ये डिफरेंस हो गया। हो गया समय, यही रुकेंगे, हाँ शंका कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो सोवाणी मस्त सनो सदा देत हो अरविंद अरविंद।